स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
आज की तारीख में जब करियर ऑप्शंस की बात आती है तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को इन्फ्लुएंसर तो किसी को फूड ब्लॉगर, बट बहुत ही कम लोगों को डिफेंस में ज्वाइन करना होता है क्योंकि पता ही नहीं ज्वाइन कैसे करना है। बस तो आप ठान लो कि आपको देश की सेवा करनी है, फोर्सेस ज्वाइन करना है। रास्ता हम यानी कि मैं आरजे निशिता और कैप्टन जयदेव जोशी बताएंगे ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। और मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी एपिसोड है, ये जो सीजन वन है जिसमें हमने बहुत सारी बात की कि हम डिफेंस के अंदर एंट्री कैसे ले पाएंगे, कौन से एग्जाम्स हमको क्लियर करने पड़ेंगे, उस एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, उस एग्जाम के बाद क्या होगा, एक जो फौजी होता है, एक जो नेवल ऑफिसर होता है, एक जो एयरफोर्स में विंग कमांडर के तौर पे जब पोस्टेड होता है तो उनके क्या क्या काम होते हैं, उनका लाइफ का डे कैसा होता है, वहाँ पे सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं, हार्डशिप्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने इस सीज़न वन में जहाँ पे हमने एंट्री डिफेंस में कैसे होती है इसके बारे में बात की। आज इसका आखिरी एपिसोड है और आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो जनरली लोगों को दिमाग में आती हैं पूछने के लिए कि इसका मैं फॉर्म कहाँ से लूँ, ये चीज़ें मुझे कहाँ पे मिलेंगी, एक्स वाई जेड। तो ये सारे जो FAQs हैं और जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में आज हमको बताएंगे। और मैं स्वागत करती हूँ कैप्टन जयदेव जोशी का। वेलकम सर।
थैंक यू निशिता एंड जय हिंद टू ऑल द लिसनर्स।
तो सर, ये हमारा आखिरी एपिसोड है सीजन वन का जहाँ पे हमने डिफेंस के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, क्यों डिफेंस के लिए लोगों को इतनी सारी अवेयरनेस नहीं है, कहाँ से लोग जो हैं वो डिफेंस के अंदर एंट्री कर पाएंगे, सारी हमने बातें की। आपको कैसा लगा?
इट वॉज क्वाइट अ वेरी गुड जर्नी। ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट के माध्यम से हमने इस पहली सीजन के एपिसोड वन से आज इस आखिरी एपिसोड तक हर वो पॉसिबल चीज जो किसी के दिमाग में आएगी उसके बारे में बात की है।
एब्सोल्युटली।
बट एज द सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, हाउ टू एंटर, व्हाई टू एंटर, व्हेन टू एंटर एंड विथ व्हाट प्रिपरेशन टू एंटर, और एंटर होने के बाद क्या होगा। और हमने यहां तक बात की निशिता आपके साथ इस पॉडकास्ट पे कि जब भी आप अपना डिफेंस की सर्विस खत्म करके बाहर आओगे तब भी आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन द सोसाइटी, ये सारी बातें की है। बट अगेन आई विल रिपीट, द सब्जेक्ट इज सो वास्ट कि ऐसे कुछ FAQs जरूर रहे होंगे हमारे लिसनर्स के। सो एज मच एज वी हैव एंजॉयड दिस जर्नी ऑफ ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट ऑफ टॉकिंग टू आवर लिसनर्स, आई एम श्योर लिसनर्स ने भी जरूर से ये एंजॉय किया होगा। एंड इन द कोर्स ऑफ ऑल दिस एपिसोड्स जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से और बाकी सुनने वाले जो लिसनर्स थे उनसे कुछ FAQs जो मिले, इट विल बी वेरी राइट निशिता कि हम आज के इस आखिरी एपिसोड में सीजन वन के उन सब को आंसर कर सके।
जी सर, और ये 13th एपिसोड है और जिसमें हम आपके FAQs के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो सबको रहता है सर, वो है ये कि ये जो वैकेंसीज होती है कि डिफेंस में हमें एंट्री करनी है, चलो ये हमें पता है और हमने डिटेल में सब बताया है कि कहाँ से कौन से फॉर्म को भरना है, ये है वो है, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन रहता है सबको कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब डिफेंस में एंट्री हो रही है, ये फॉर्म्स वगैरह हैं, इनकी वैकेंसीज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है।
सो वन कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे डिफेंस फोर्सेस की जो भी कोई एग्जामिनेशन आएगी, रिक्रूटमेंट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आता है, वो है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
ओके।
आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज की हार्ड कॉपी या इवन उनकी वेबसाइट पे जाके या अलग कोई भी तरीके से अप्रोच करके, नॉट ओनली डिफेंस, बाकी जो भी सारे नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट आते हैं, एग्जाम्स आती है, वो ले सकते हैं। सो दिस द वन प्लेस, एक अम्ब्रेला के नीचे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो पैरामिलिट्री भी हो सकता है, आर्मी का अलग से, एयरफोर्स का अलग से, इट कैन बी एनीथिंग।
राइट।
द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन नाउ इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तीनों की डेडिकेटेड जो वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट्स के ऊपर एक अलग से टैब है। इन द वेबसाइट ऑफ आर्मी यू मे सी ज्वाइन इंडियन आर्मी करके टैब,
ओके,
उसके अंदर फिर अलग अलग सेक्शंस, मेनू, सब मेनू है, फॉर्म्स है डाउनलोडेबल, जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए आते हैं। और इसी तरीके से एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स और नेवी पे ज्वाइन इंडियन नेवी है,
ओके,
विच नॉट ओनली गिव्स यू द नोटिफिकेशन बट क्या आप इस पर्टिकुलर एग्जाम, टेस्ट, रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो के नहीं, एजुकेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, बाकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो चीज भी आपको देता है। सो ये दूसरा जरिया है। तीसरा जरिया, आज के जमाने में ऑल दी लर्निंग वेबसाइट्स एंड लर्निंग एप्स, देयर आर सो मेनी कमर्शियल एप्स इन द मार्केट जो इसके बारे में आपको बताती है। न्यूज पोर्टल्स बड़े सारे होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, वहां से पता लग सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई विल रिक्वेस्ट अवर लिसनर्स के एक बार अपने नजदीकी कोई भी कैंटोनमेंट जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, या फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का भी अगर कोई यूनिट है, बटालियन है, तो आई रिक्वेस्ट विजिट इट वंस। हो सकता है आपको सीधी एंट्री नहीं मिलेगी, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, आपको आपका मकसद प्रूव करना पड़ेगा, बट वहां पे जाके एक इनफॉर्मल विजिट, और जिस भी कैडर के, जिस भी रैंक के ऑफिसर से या जवान से आप मिल सको, उनसे मिलो, बात करो, तो वो सारी ऐसी अंदर की चीजें बताएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि ये मेरे एफएक्यू है, वो भी शायद सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज द मे बी द फोर्थ थिंग जो कोई कर सकता है टू नो अबाउट वैकेंसीज कहाँ से आती है।
वाओ, अमेजिंग। अब सर बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर ऐसे ही कोई यू नो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे होता है, तो उसको बोला जाता है कि आपको स्पोर्ट्स कोटा में, गवर्नमेंट में तो वैकेंसीज जो होती हैं उनको बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन डिफेंस में भी आपको एंट्री मिल सकती है बिकॉज यू आर गुड इन एक्स वाई जेड स्पोर्ट्स। तो इज दैट ट्रू? तो स्पोर्ट्स कोटा में अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई किसी स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं डिफेंस में आने के?
स्पोर्ट्स कोटा से अगर कोई आना चाह रहा है या फिर कोई एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो आना चाह रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं अपने इस पॉडकास्ट में के एंट्री पास, ही सॉर्ट ऑफ हैज एन नो ऑल एक्सेस एंट्री पास, एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा आसान है टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस। और इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि हमारे ओलंपिक में द फर्स्ट सच मेडल विनर इन ओलंपिक्स, द जेवलिन थ्रोअर, वो भी पहले वो स्पोर्ट्समैन थे, एंड देन आर्मी जो एक मिशन चला रही है फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स, उसमें उनको पिक किया गया, उनको अपने वहां पे रखा गया, इज बीन गिवन अ रैंक आल्सो, सो दैट मेक्स इट इजीली फॉर देम टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस। स्टेट और नेशनल लेवल एथलेटिक्स या नेशनल गेम्स पे भी जो कोई अच्छा काम करता है, अच्छा खेलता है, उनको डायरेक्टली इन नायब सूबेदार और हवलदार कैटेगरी में लेने के अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो तीनों आर्म फोर्सेस बड़े अच्छे से निभाती है। जो हेड कॉन्स्टेबल्स की एग्जाम्स होती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, उसमें भी स्पोर्ट्स में अगर आपका स्टेट, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो उसके बड़े एडिशनल मार्क्स हैं। सो यस, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड इट्स ऑलमोस्ट एन ऑल एक्सेस पास।
ओके, सो सर ये आउटडोर स्पोर्ट्स ही हो गया, ये कोई चेस खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई टीटी खेल रहा है, तो उनको तो वो एक्सेस नहीं है सर।
पसीना बहना चाहिए, आप फौज में आ रहे हो तो फौज में आ गए तो थोड़ा पसीना बहाइए। नॉट टू डीमीन एनी अदर गेम, चेस खेल के भी अगर कोई आता है तो उसका माइंड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए शार्प होगा, तो मे बी डायरेक्टली वो एंट्री ना मिले, बट समवेयर इट विल डेफिनेटली हेल्प, एंड एवरीबॉडी शुड बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, उससे बड़े सारे सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं, एंड समवेयर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू।
एब्सोल्युटली। ओके, एक और बहुत ही यू नो सबको मन में क्वेश्चन रहता है कि अच्छा ठीक है, डिफेंस में जब तक मैं हूँ तब तक मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बार रिटायर होने के बाद मेरे पास क्या स्कोप है, यू नो ये किसी की भी बड़ी चिंता हो सकती है, किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आप आंसर कीजिए प्लीज।
एज द नेशन टेक्स केयर ऑफ इट्स सोल्जर्स वेरी ग्रेटफुली, वैसे ही नेशन ख्याल रखता है इनका जब ये सोल्जर नहीं रहते हैं। अ ग्रेटफुल नेशन इज ऑलवेज रेडी फॉर द रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, एंड अगर कोई रीएम्प्लॉयमेंट चाहता है तो फौज के या फौज द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाए जाने वाले कोई प्रोजेक्ट्स या फिर कोई कॉरपोरेट या सरकारी प्रोजेक्ट में भी, यूनिफॉर्म सर्विस में भी, जैसे पुलिस है, उसमें बड़े अच्छे से ये रिटायर्ड सोल्जर अपने आप को सेटल कर सके, उसका ख्याल डेफिनेटली देश रखता है, सरकारें रखती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थ्रू वन डिपार्टमेंट विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जो रीसेटलमेंट, वेलफेयर, पेंशन, बाकी जो भी वेलफेयर उनको इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं वो इन सब का ख्याल रखता है, नॉट ओनली टिल द टाइम द सोल्जर इज अलाइव बट ऑल्सो आफ्टर हिज डेथ, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को क्या मिलना चाहिए, उनके बच्चों को क्या मिलना चाहिए, उसका ख्याल रखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स चलाती हैं राज्य, दैट इज यू नो द स्टेट रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर ऑफिसेस। इस स्टेट ऑफिसेस के नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ऑफिसेस होते हैं विच डू टेक केयर ऑफ अ सोल्जर इन एवरी पॉइंट विच इज नो परसीवेबल और इवन थॉट ऑफ।
ओके सर, जैसे एंट्री तो हमने कैसे होती है इसके बारे में पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया है कैसे कैसे मेहनत करनी होती है ये सारे चीज़ों के बारे में, लेकिन जब आप एक बार एंटर कर जाते हैं, कुछ इयर्स ऑफ सर्विसेज आपने डिफेंस में दिए हैं और उसके बाद आपको अपनी मर्जी से एग्जिट करना है कुछ रीजंस के लिए, तो वो कैसे होती है?
ऑप्ट आउट करने के भी बड़े चांसेस है और बड़े मौके हैं, एंड मोस्टली दिस ऑप्टिंग आउट इज द लास्ट रिसोर्ट। अपने परिवार से दूसरा दूर एक परिवार बना पाना ये एक बड़ी बात है और उस परिवार को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, बट अगर किन्हीं कारणों से वश अगर आपको ये करना पड़े तो कोई भी सोल्जर, कोई भी ऑफिसर अपने कमांडिंग ऑफिसर या फिर अपने सीनियर कमांडर को ये लिख के साइटिंग द रीजन ही कैन ऑप्ट आउट। मोस्ट आइडियल रहता है जब आप अपनी पेंशनेबल सर्विस को अटेन कर ले, जिसको कलर सर्विस भी बोलते हैं एट टाइम्स, तो 14, 15 साल, 16, 17 साल ये जब होते हैं तब आप ऑप्ट आउट करने का बड़ा अच्छा तरीका है। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो ऑफिसर्स बनते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो वो अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर खत्म करके 10 साल या थोड़ा एक्सटेंड करा के 2 साल ऐसे करके ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एंड इवन आफ्टर द पेंशनेबल सर्विस जो अर्लीएस्ट हो जाता है, जो कि 15 साल मान लीजिए, तो कोई 20 साल की उम्र में गया, तो इवन एट द एज ऑफ 35 वन कैन कम आउट विद पेंशन।
राइट।
अभी जो अग्निवीर स्कीम आई है उसके देखते हुए हालात थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जवान्स हु विल बी देयर 75% तक के जवान 4 साल के बाद वापस सोसाइटी में आएंगे, एंड देट दे विल बी एज यंग एज 23 साल या 24 साल या मैक्सिमम 25 साल, तो उनके लिए भी करियर अपॉर्चुनिटीज बड़ी रहती है। वंस यू क्रॉस दिस एज का बैरियर, जो पुराने फौजी आज की डेट में भी फौज में है, वो कभी भी पेंशनेबल सर्विस अटेन करने के बाद कभी भी एक रिक्वेस्ट डाल के, अगर वो रिक्वेस्ट ग्रांट होती है तो परमिशन से, कभी भी हो सकता है, कभी कभी 1 या 2 साल का समय लग जाता है, अगर इमरजेंसी है तो तुरंत भी हो सकता है, बट इस प्रोसेस के थ्रू कभी भी अगर चाहे तो बाहर निकल सकते हैं,
ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि वीआरएस जैसा कोई स्कीम
है।
ओके और सर मैं एक और भी बात पूछना चाहूंगी कि जब भी आर्मी में या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में कोई सस्पेंड होता है तो क्या होता है, यू नो ऐसे भी कई किस्से होंगे कि जहाँ पे किसी चीज़ की वजह से उनको सस्पेंड किया गया हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर वो पूरा सिनेरियो क्या रहता है?
एट द स्टार्ट लेट मी टेल यू निशिता कि ये बड़ा ही एक अगली सीन होता है, ये कोई पसंद करने वाली बात है नहीं, बट फौज में ये कहते हैं कि शाबाशी और सजा दोनों मिलनी चाहिए, वहीं पे मिलनी चाहिए और बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए।
राइट।
तो अगर कोई ऐसी हरकत करता है जिसके कारण उसको सस्पेंड करना, जो आप कह रहे हैं वो हो, या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स में ब्लैक या रेडिंग एंट्री ऐसी कोई चीज हो, अगर ऐसा कुछ होता हो तो ये कोई बड़ा अच्छा नहीं देखा जाता है इस चीज को, बट यस डेफिनेटली ये चीजें होती है। ये होने के पहले पूरी प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर उनको भी समझाई जाती है, उनको बताई जाती है, अलग अलग लेवल भी है वार्निंग के, वो भी दिए गए होते हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट भी किया गया होता है। तो उसके बाद अगर किसी को निकालने की नौबत आती है तो जैसा ऑफेंस जैसी गलती उस हिसाब से वो जाता है. द वर्स्ट सिनेरियो की बात करके हम इस चीज को आंसर करते हैं, वो ये रहेगा कि जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सूखा घर भेज दिया, टू सेंड समबडी होम ड्राई, मतलब ना उसको कोई पेंशन मिलेगा, ना कोई वेलफेयर की चीज मिलेगी बाहर जाने के बाद, ना ही वो कोई अपने फौज के सर्विस के दौरान मिले हुए अचीवमेंट्स को दिखा पाएगा, बता पाएगा या उसका बेनिफिट ले पाएगा. सो लिटरली ही विल बी रॉब्ड ऑफ एवरीथिंग जो उसने कमाया है, लिया है, जिसका वो हकदार है. उस एक गलती जो उसको समझाई गई होगी, वार्निंग दी गई होगी, उसके बाद प्रूव की गई होगी विटनेसेस और प्रोसीजर के बारे में, फिर भी अगर उसको भेजा जाए तो इन वर्स सिनेरियो ही गोज होम ड्राई विदाउट टेकिंग एनीथिंग विथ अ लॉट ऑफ शेम ऑन हिज नेम.
ओके,
एक किस्सा फौजी का.
अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी का एक ऐसा किस्सा बताएं जहाँ पे यू नो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता होगा कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस इसीलिए मिला क्योंकि आप डिफेंस में हैं. अगर आप डिफेंस में नहीं होते तो आपको ये एक्सपीरियंस करने को ही नहीं मिलता. एक किस्सा फौजी का जो हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट रहा है जहाँ पे हम कैप्टन जयदेव जोशी के जर्नी के बारे में हम बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं. और आज आखिरी एपिसोड में मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जिससे बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उनके अंदर ये जोश जागे, जुनून जागे कि वो डिफेंस ज्वाइन कर पाए.
एज यू सेड निशिता के डिफेंस ज्वाइन करना और डिफेंस ज्वाइन करने के बाद इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो दिल के बड़े करीब हो, जो हम ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो है पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप. मैं एज एन ऑफिसर गया था, हम बोलते हैं ऑफिसर मैन रिलेशनशिप, के अपने JCOs, NCOs, अदर रैंक्स के साथ आप कैसा बॉन्ड बना पाते हो. एंड व्हाट हेल्प्ड मी वाज माय NCC ट्रेनिंग. ड्यूरिंग माय NCC ट्रेनिंग ऑलमोस्ट श्योर था कि फौज तो ज्वाइन करेंगे, बट वी वर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, उस सोच को ज्यादा मजबूत कर रहे थे. तब आफ्टर एवरी NCC ट्रेनिंग इज ओवर, वी वुड जस्ट सिट विथ अवर सीनियर NCOs एंड JCOs. तब वो जब लाइफ की फिलॉसफी की बात करते हैं, तब ये कहने का मन हो गया था हम कुछ कैडेट्स को साथ में कि उन्होंने कभी डेथ के बारे में बात की, परिवार के बारे में बात की. इनफैक्ट वन ऑफ देम आल्सो सजेस्टेड मी, केम विथ मी एंड हेल्प मी गेट अ गोल्डन रिंग आल्सो फॉर माय देन सोलमेट एंड लेटर ऑन आई वेंट टू मैरी हर. तो वो भी किया. तो
wow.
ये जो ऑफिसर मैन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉन्डिंग जो हम बना पाते हैं, तब हमको ये बोलने का उनके बारे में मन हुआ था कि ये सैनिक तो है पर साथ में संत भी है. बड़ी ऐसी लाइफ फिलॉसफी वर्दीधारी लोगों के पास से आप सीख सकते हो. ये जो बॉन्डिंग होता है एंड टेकिंग इट टू अ हायर स्केल आल्सो, जब आप वॉर में जाते हो तो हर फौजी यूनिट में एक बड़ी पेयर सिस्टम होता है कि दो लोग हमेशा साथ होते हैं. ये बड़ी पेयर सिस्टम के थ्रू जो कोई भी आपके साथ होता है, आपके लिए होता है, उसके साथ जिंदगी साथ होती है, मौत आएगी तो साथ में आएगी, और मौत आएगी तो ये कोशिश रहेगी कि उसको मौत ना आए, मुझे आ जाए
जी.
ये ह्यूमन बॉन्डिंग जो हम बना पाते हैं, that is the best which the armed forces can give you.
Absolutely. और मुझे लगता है कि अब इतने सारे हमने 13 episodes किए, इसमें हमने सर के जितने भी किस्से सुने हैं उसमें आप देखेंगे एक बॉन्डिंग उनका अपने ट्रूप के साथ, अपने यूनिट के साथ, अपने यू नो वेपन के साथ, अपने ट्रेनिंग जो अपने ट्रेनर्स थे, अपने कमांडिंग ऑफिसर्स, सबके साथ जो भी बॉन्डिंग है वो हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है. यू नो इट गिव्स दैट फीलिंग when he talks about them, when he tells his experiences about them. तो ये जो सारी बातें हैं हमें बहुत अच्छे से सुनने को मिली. और डिफेंस में एंटर होने के बाद जब कोई बाहर आता है तब वो सारे लर्निंग्स, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनके अंदर उनके स्वभाव में भी आ जाती हैं। आज आप चाहे कोई भी आर्मी मैन को देखें या फिर नेवी मैन को देखें या फिर कोई भी एयरफोर्स वाले बंदे को देखें, उनमें एक अदब, उनमें एक डिसिप्लिन, उनमें एक अलग शिवलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही सारी बातें जो हैं हम अगले सीजन के भी बहुत सारे एपिसोड्स में करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसका फीडबैक, इसके सजेशंस हमें डेफिनेटली दीजिए हमारे सोशल मीडिया पे। एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट कैप्टन जयदेव जोशी, ही इज देयर ऑन सोशल मीडिया, आई एम ऑल्सो देयर ऑन सोशल मीडिया। अंटिल नेक्स्ट सीजन, जय हिंद। कैप्टन जयदेव जोशी की बातों से आप में भी वो जोश और जज्बा डिफेंस ज्वाइन करने के लिए जाग चुका है, तो बने रहिए हमारे साथ ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट में। यू कैन डीएम अस योर क्वेरीज एंड टू गिव अस फीडबैक द लिसनर्स कैन रीच आउट टू अस ऑन @HTSmartcast। वी आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। टू लिसन टू मोर पॉडकास्ट लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com और सुनो नए नजरिए से।
आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD Smartcast।